सर्वशक्तिमान की संतान हो,
तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
कौन कहता है महज इंसान हो,
सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय कि इस अंक में मैं ईला आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जीवन में हम सब खुश रहना चाहते हैं, अक्सर भगवान से भी हम यही मांगा करते हैं कि हे भगवान मेरा जीवन खुशियों से भर दो। खुशी को हम हर जगह ढूंढते हैं, कभी पति में, कभी बच्चों में, अपने करीबी रिश्तेदारों में, ऑफिस में, और यही नहीं मंदिरों और मस्जिदों में भी। जीवन के इस मुकाम पर खुशी की तलाश आज भी जारी है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है बीके तृप्ति दीदी। ओम शांति।
ओम शांति।
तो सिस्टर तृप्ति, खुशी क्या होती है और इसे किसे कैसे पाया जा सकता है?
खुशी, हैप्पीनेस, it's a state of my mind. It's like a runway on which my aircraft is stable amidst turbulences. तो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी environment हो, क्या मेरा मन stable रहता है? और अगर मेरा मन stable है तो इससे मुझे मिलती है खुशी। तो आज हम सब अब यह चेक करेंगे कि क्या हमारा मन स्टेबल रहता है। तो मैं निवेदन करूंगी ईला आपसे और अपने दर्शकों से कि अब कुछ पल के लिए हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे। किस प्रकार के विचार मेरे मन में चल रहे हैं? और अगर कोई विचार ऐसा हो जो जरूरी है लेकिन अभी के लिए जरूरी नहीं है, तो उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम अभी जाओ और बाद में आना। तो ईला, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि अगर आप अपने मन को ऐसा इंस्ट्रक्शन दें तो क्या आपका मन आपकी बात मानेगा?
इंस्ट्रक्शन तो दीदी दे सकते हैं, पर क्या मन बात मानता है? क्या हम सही में मन को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं?
तो लेट्स ट्राई। अगर आप हम यह मान लें अभी कि बाहर आपका कोई दोस्त खड़ा है, ओके, कोई फ्रेंड है जो आपको बाहर से इशारे से बुला रहा है और आप अभी इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं कि आप अपने फ्रेंड को क्या जवाब देंगे?
मुझे बुरा तो लगेगा, पर मुझे उसे कहना होगा कि अभी नहीं, एक घंटे बाद आना या कल आना।
और अगर आप ऐसा कहेंगे तो क्या वो आपकी बात मानेगा?
मेरा अच्छा फ्रेंड होगा तो जरूर मानेगा।
जरूर। और इसी प्रकार अगर आपका फ्रेंड किसी मीटिंग में बिजी है और अगर आप अपने फ्रेंड को बाहर से बुलाएं, तो आई एम श्योर आपका फ्रेंड कहेगा अभी मैं बिजी हूं, बाद में आना। और उसी तरह आप भी अपने फ्रेंड की बात मानेंगे।
सही है।
तो अब हमने ये इक्वेशन देखी, आपका मन उसकी बात मानता है और उसका मन आपकी बात मानता है।
सही है।
तो जो कठिन बात थी वो तो सिंपल हो गई, और अब जो सिंपल बात है वह है मेरा मन मेरी बात माने। तो हमें यह देखना है कि क्या मेरा मन मेरी बात मानता है, क्योंकि अभी जो उदाहरण हमने देखा उससे हमें यह क्लियर हुआ कि मेरे मन में पावर है अपनी बात दूसरों को सुनाने की और दूसरों की बात सुनने की। तो क्या मेरा मन मेरी ही बात नहीं सुनेगा? और अक्सर हमने यह देखा है कि मेरा मन मेरी बात नहीं सुनता है। कारण क्या हो सकता है? ईला, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आखिरी बार अपने मन से कब बात की थी, अपने मन को आखिरी बार इंस्ट्रक्शन कब दिया था?
याद ही नहीं, पता ही नहीं मन से कैसे बात की जाती है।
तो हमने यह देखा कि हम अपने मन से बात ही नहीं करते, हम अपने मन को इंस्ट्रक्शन ही नहीं देते, और अगर हम अपने मन से कुछ कहेंगे ही नहीं तो वो समझेगा कैसे और सुनेगा कैसे? अगर मैं यह पूछूं कि ईला, आप अपने घर की सफाई कब करते हैं?
घर की सफाई तो रोजाना होती है, कभी कभी दिन में दो बार होती है।
और आप अपने शरीर को साफ कब करते हैं?
वो भी रोजाना या कभी कभी दिन में दो बार।
और अगर ये मैं पूछूं कि आप अपने मन की सफाई कब करते हैं?
पता ही नहीं मन की सफाई कैसे की जा सकती है।
तो हमने यह देखा कि हम सभी अपने घर को साफ रखते हैं, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखते हैं, लेकिन हम किसके तरफ ध्यान नहीं देते? वो है मेरा मन। तो जरूरत है कि हम अपने मन को साफ करें। बात यह है कि हमारे मन में बहुत समय से कूड़ा जमा हुआ है, कचरा जमा हुआ है। जितनी भी बातें होती हैं हम अपने मन में समाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको कुछ बुरा भला कह दूं कैमरा के सामने, दर्शकों के सामने, तो आपको कैसा लगेगा?
अगर आप कुछ बुरा भला कह दें तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, सदैव याद रहेगा, दुख भी होगा।
सही है। तो ऐसा ही होता है, हमारे जीवन में कितने लोग आते हैं जाते हैं, कितनी बातें होती हैं, और जब हमें बहुत बुरा लगता है तो हम तो ये भी कहते हैं कि आई विल रिमेम्बर दिस फॉर माई एंटायर लाइफ, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। पर अगर वही व्यक्ति कोई अच्छी बात हमसे कह दे तो हमें याद रहता है कुछ समय तक, पर हम बाद में अच्छी बात को जल्दी भूल जाते हैं, बुरी बात को हम अपने साथ पकड़े रहते हैं, और इससे क्या होता है, हमारे मन में कूड़ा कचरा जमता जाता है और हमारे मन में या तो कचरा रह सकता है या फिर सफाई रह सकती है, या तो रात है या फिर दिन है। इट्स लाइक अ स्विच, या तो यह ऑन है या फिर यह ऑफ है। तो या तो हमारे जीवन में दुख है, गम है, परेशानियां हैं, या फिर हमारे जीवन में सुख है, शांति है, खुशी है। तो चॉइस हमारी है।
तो हम अपने जीवन में खुशी ही चाहेंगे और चाहेंगे कि ये कचरा हमारे मन से सदैव के लिए निकल जाए।
बिल्कुल सही। हमने आईना तो देखा ही है, हम रोज अपना चेहरा आईने में देखते हैं, पर अगर वह आईना मटमैला हो, उस पर धूल जमी हुई हो, तो क्या हमें अपना चेहरा उसमें स्पष्ट नजर आएगा?
नहीं आएगा,
है ना? उसी प्रकार हमारे जीवन में कितनी ही बातें होती हैं, कितनी ही परिस्थितियां आती हैं, कितने ही तरह तरह के लोग आते हैं। कोई आता है, कुछ कह जाता है, तो वह मेरे आईने पे समझो हरा रंग छोड़ के जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है, कुछ बोलता है और नीला रंग करके जाता है। तीसरी परिस्थिति आती है जो इस पर काला रंग लगा कर जाती है। तो जब यह आईना इतना मटमैला हो जाता है तो उसमें मुझे अपना चेहरा साफ नजर नहीं आता है। तो अब जरूरत है मुझे इस मन रूपी आईने को साफ करने की, और अगर हम साफ करने का प्रयास करेंगे तो इस पर इतनी धूल लगी हुई है कि यह धीरे धीरे साफ होगा। शुरुआत में जरा तकलीफ होगी, जरा अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो जाएगा। और हमने जैसे देखा, हम अपने घर की सफाई करते हैं रोज, रेगुलरली, ना? उसी प्रकार से हम अपने शरीर की भी सफाई रोज करते हैं। तो आज से हम अपने मन की भी सफाई रोज करेंगे। तो एक है यह आईना, इसका क्लियर दिखना। कभी कभी क्या होता है, हमने चिड़ियाघरों में देखा है, लाफिंग हाउस, उसमें क्या होता है, कोई आईना ऐसा होता है जिसमें हम मोटे नजर आते हैं, किसी आईने में नाटे नजर आते हैं, किसी में लंबे नजर आते हैं, किसी में आड़े, किसी में तिरछे। तो हमें कैसा आईना बनना है? हमें स्वच्छ आईना बनना है, क्लीन एंड क्लियर, जिसमें मैं अपने आप को क्लियरली देख सकूं, मैं जैसी हूं वैसी ही उसमें दिखूं, और साथ ही साथ सामने वाला भी मुझे जैसा है वैसा ही नजर आए। तो अब यह जरूरी है कि हम अपने इस मन रूपी आईने को साफ करना सीख लें,
ताकि हम सही इमेज देख पाए अपनी।
सही है, ताकि हम अपनी इमेज
सही तरीके से देख पाए,
देख सके। तो हमने यह देखा कि हमने अपने मन में बहुत कुछ स्टोर करके रखा हुआ है, जेलसी, क्रिटिसिज्म, हेट्रेड, एंगर और पता नहीं क्या क्या, और इन सभी से क्या हमें मिलता है? टेंशन, फियर, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, और ये सारी बातें हमारे मन में जमा होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं। तो आज हम सब क्या करेंगे? अपने मन की सफाई करेंगे। तो जो विचार हमारे मन के लिए अननेसेसरी है, या कहें नेसेसरी है लेकिन अभी के लिए नहीं, किसी और समय के लिए, तो हम उस थॉट को कहेंगे तुम अभी जाओ। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारे बच्चे को स्कूल छोड़ना है कल सुबह, तो हम उस थॉट को कहेंगे तुम अभी जाओ, कल सुबह 7 बजे आना, क्योंकि वह थॉट जरूरी है। बच्चे को स्कूल पहुंचाना समय पर जरूरी है, लेकिन वह थॉट अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम अपने मन को बहुत सारे संकल्पों से बिजी नहीं करेंगे, तो इसलिए आज से हम सभी अपनी मन की सफाई रेगुलरली करेंगे। हमने ये देखा भी है कि जो बातें हमारे लिए अननेचुरल थी, जैसे टेंशन, फियर, इनसिक्योरिटी, अब वो बातें हमें नेचुरल लगने लगी हैं। कहते भी हैं, क्या करें, बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया, नेचुरल है। क्या करें, मेड सर्वेंट ही नहीं आई थी, मुझे टेंशन हो गया, बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, कितना ऑब्वियस है मुझे टेंशन आना। तो वो सारी बातें जो अननेचुरल थी अब मेरे लिए नेचुरल हो गई हैं, और वो बातें जो मेरे लिए नेचुरल थी, जैसे खुशी, आनंद, प्रेम, शांति, वो सब बातें कहाँ गई? वो सब बातें जैसे खो गई हैं, कहीं
ढूंढनी पड़ती है हमें, आजकल वो सब यहाँ से गुम हो गया है।
सही, तो शांति की खोज में हम भटकते रहते हैं। तो अब हमने क्या जाना कि अननेचुरल बातें जो अब नेचुरल हो गई हैं, उन्हें हमें फिर से अननेचुरल बनाना होगा, और वो बातें जो मेरे लिए पहले नेचुरल थी अब रेयर कमोडिटी हो गई हैं, उन बातों को फिर से मुझे नेचुरल बनाना है।
लेकिन दीदी, गुस्सा आना कितना नेचुरल है, किसी ने हमें कुछ कह दिया तो गुस्सा आना बहुत नेचुरल सी बात है, तो इसे हम कैसे अननेचुरल कह दें?
जी, तो जैसे हमने देखा, हम गुस्से को नेचुरल समझने लगे हैं। अगर कोई परिस्थिति मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है तो मैं यह समझती हूँ कि मेरा गुस्सा होना नेचुरल है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बॉस है, उसने एक असाइनमेंट दिया अपने टीम को। टीम के 5 सदस्य थे और एक टाइमलाइन दी, इस टाइमलाइन पे मुझे एक डिलीवरेबल चाहिए। और उस टीम ने कोशिश की, मेहनत की, पर उस समय पर वो डिलीवर नहीं कर सके। तो बॉस बाहर आता है और एक ही तरह की डांट वो सभी को लगाता है, सभी पे वह बरस पड़ता है, गुस्सा हो जाता है क्योंकि बिजनेस का लॉस हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या उन सभी लोगों की एक जैसी रिएक्शन होगी?
एक जैसी तो नहीं होगी, किसी को ज्यादा बुरा लगेगा, किसी को कम, पर बुरा तो लगेगा।
सही, तो हमने यह देखा, सिचुएशन एक समान थी, परिस्थिति वही थी, एक्सटर्नल स्टिमुलस सबके लिए वही था, पर हर एक का रिस्पॉन्स उस स्टिमुलस के लिए अलग अलग था। तो अगर परिस्थिति मुझे गुस्सा दिलाती है तो परिस्थिति को हम सभी को एक समान गुस्सा दिलाना चाहिए था, पर हमने क्या देखा, परिस्थिति एक होने के बावजूद भी हर एक का गुस्सा कहें या रिएक्शन कहें, हर एक की रिएक्शन अलग थी। किसी ने सोचा कि अरे, बॉस अगर गुस्सा हो रहा है तो वह बिल्कुल ठीक है, किसी ने सोचा बॉस बेमतलब ही गुस्सा होता है, उसे मुझसे जरूर कोई प्रॉब्लम है, किसी ने सोचा ये तो मेरा इंसल्ट है और अब मैं बदला लेकर रहूंगा। तो तरह तरह की रिएक्शंस। तो इससे हमें यह पता चलता है, परिस्थिति हमें गुस्सा नहीं दिलाती है, गुस्सा हम अपने मन में क्रिएट करते हैं, अपने मन की कैपेसिटी के आधार पर। तो अब हमने यह देखा कि ये सारी बातें जैसे गुस्सा, अशांति, जेलसी, टेंशन, फियर, ये हम क्रिएट करते हैं. और डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ सिचुएशन जो हम परसीव करते हैं, हमारे परसेप्शन के आधार पर हम अपने मन के थॉट्स क्रिएट करते हैं. तो इससे हमें यह साफ होता है कि परिस्थिति हमें कुछ भी हमारे मन को कर नहीं सकती, हमारे मन की कंडीशनिंग सिर्फ हमारे हाथ में है. आज हमने यह सीखा कि हमारे मन में काफी गंदगी भर गई है, गुस्सा, टेंशन, जेलसी, क्रिटिसिज्म, इन सब चीजों ने हमारे मन में घर बना लिया है. परिणाम स्वरूप इनसिक्योरिटी, हाइपरटेंशन, ये चीजें मन में आ गई हैं. खुशी जो नेचुरल थी वो आज अननेचुरल हो गई है, और अननेचुरल जैसे टेंशन हमारा नेचर बन गया है. तो आज हमें क्या करना है? आज हमें हमारे मन की सफाई करनी है. हमें हमारे मन से टेंशन, हाइपरटेंशन, इनसिक्योरिटी, इन सब भावनाओं को निकालना है और अपने मन में खुशी को जगह देना है. हमारे सीरियल का उद्देश्य है कि आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ अपने इस धारावाहिक में दिखाएं, ताकि आप सभी को इसका लाभ हो. अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो, सुझाव हो या प्रश्न हो तो हमें अवश्य लिख भेजिए. हमें आपके प्रश्नों का देना उत्तर देने में बहुत ही आनंद होगा. तो आज मैं इस एपिसोड के लिए सिस्टर तृप्ति का धन्यवाद करना चाहूंगी. धन्यवाद सिस्टर तृप्ति. नेगेटिव थॉट्स को बाय, हैप्पीनेस को हाई. ओम शांति.
ओम शांति.
सत्य और पवित्र ज्ञान की अनुभूति ही योग है. मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, तथा मुझ आत्मा का पिता भी मुझ जैसा ही है, परंतु वो परम और अनंत है. आत्मा का परमात्मा के साथ मानसिक संबंध ही सर्वोच्च मानसिक अवस्था है, जिसमें आत्मा स्वयं को शांति, प्रेम और प्रसन्नता के सागर में डूबा हुआ महसूस करती है. योग शब्द सुनने से ऐसा लगता है कि ये शायद कोई बहुत ही कठिन प्रक्रिया होगी, परंतु नहीं. योग का सीधा सा अर्थ याद है, आत्मा अपने पिता परमात्मा को सच्चे मन से याद करे, यही योग है. यदि हर मनुष्य अपने अंदर गहराई से झांक कर देखे तो वो अनुभव करेगा कि उसके अंदर अपने वास्तविक घर की तथा ईश्वरीय गहन शांति के चिन्ह विद्यमान है. योग का एक अर्थ होता है उस परम अनुभूति को याद करना, जब हम अपने मूल स्वरूप अर्थात निराकारी दुनिया में सिर्फ आत्म रूप में थे तो हम कैसा अनुभव करते थे. उस अनुभूति को इस देह में होते भी पुनः अनुभव करना, इन सभी गहरे अनुभवों का आधार ज्ञान है. ज्ञान अर्थात समझ, जो हमें इस दुनिया की हदों से पार ले जाता है. सुख और शांति हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे प्राप्त करने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए. राजयोग के माध्यम से हम अपनी खोई हुई शक्तियों और गुणों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग एक अति सरल प्रक्रिया है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है, परंतु इसमें थोड़ा समय अवश्य लगता है।
इस ब्रह्म कुमारी परिवार से करीबन 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ख्याल से बचपन से ही ये ज्ञान मिलने के कारण मेरे जीवन में जो कलाएँ विकसित हुई है या को कुछ दैवी गुण आए हैं, जिसके कारण मैं मेरा आज का जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे जीवन में पूरी तरह से सुख शांति है और मैं फील कर रहा हूँ कि मैं एक खुश नसीब हूँ जो मुझे ये मार्ग मिला है, इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और खुद से सेटिस्फाई हूँ, परिवार से सेटिस्फाई हूँ।
अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है।
मधु का अक्षय कोश सदा शिव है और हम मधुबीनी संताने हैं।
सत्यम शिवम सुंदरम,
परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं।
सत्यम शिवम,
बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर, मन उसको नमन बार बार करता,
मन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है।
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है,
शिव अनादि है,
मधुबन
शिव बसंत है।